हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा अकेली अपनी बेटी तराना को लेकर दादा महाराज के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से अमन को आवाज़ दी थी। अमन सर, आप कहाँ हैं? ऐसा कहकर वो करिश्मा जी के कमरे में चली गई थी, क्योंकि अमरेंद्र, करिश्मा जी और अमन तीनों एक ही जगह मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने तराना को देखा, तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमन आगे बढ़कर तराना को गोद में ले लिया और करिश्मा जी को दे दिया। तीनों बड़े प्यार से तराना को छूने लगे थे। कोई उसके गालों को तो कोई उसके हाथों को छू रहा था। वे उसे बहुत प्यार कर रहे थे। तराना यानी जिन अंश सबको मुस्कुरा कर देख रही थी, क्योंकि तारा परी ने उसे बहुत खूबसूरत कपड़े पहनाए थे। इससे उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। तभी तारा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, मॉम, मैं सोच रही हूँ, अब तो तराना जिन्नातों की दुनिया से भी आ गई है, तो उसे हम दादा महाराज का आशीर्वाद दिलाने कब ले जाएंगे? जैसे ही तारा ने तीनों को दादा महाराज का ध्यान दिलाया, अमरेंद्र, करिश्मा और अमन तीनों हैरानी से तारा की ओर देखने लगे। वे कहने लगे, हमें अभी इसी वक्त बगीचे के लिए निकलना होगा। हम तो ये भूल गए कि जिन्नातों की दुनिया से आने के बाद हमें सीधा तराना को दादा महाराज के पास लेकर जाना था, करिश्मा यानी अमरेंद्र जी गुस्से से कहने लगे। आखिरकार करिश्मा जी, आप कैसे भूल सकती हैं? इतनी बड़ी गलती हम लोगों से कैसे हो सकती है? दादा महाराज तो ज़रूर क्रोधित हो गए होंगे, और उन्हें मनाना फिर आसान नहीं होगा। ऐसा कहकर वे तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि तराना के आने की खुशी के चक्कर में वे दादा महाराज को ही भूल गए थे। अब उन्हें दादा महाराज के क्रोध की चिंता सताने लगी थी। तभी तारा परी ने कहा, आप हमें इस तरह से बातें करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल्दी ही हमें बगीचे में जाना चाहिए। तारा की बात मानते हुए चारों तराना को लेकर बगीचे की ओर रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर उस राक्षस की माँ ने अपने नौजवान शस्त्र से कहा था कि वो 24 घंटे तराना पर नजर रखे। जब भी जादुई शॉल उससे एक मिनट के लिए भी अलग होगी, उस वक्त तुम्हें उसकी जान लेनी होगी, और अगर वो जादुई शॉल उसके जिस्म से अलग नहीं होती है तो तुम उसे गायब कर देना। चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसकी जान हर हाल में ले लेना। तब उस राक्षस के शस्त्र ने उसकी माँ से कहा, आपका बोला हुआ काम मैं ज़रूर कर लूँगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक मदद करनी होगी। आपको मुझे परीलोक में जो दानव है, यानी कि आपका बेटा, उसकी कुछ शक्तियाँ दिलानी होंगी, जिससे मैं उस जादुई शॉल का सामना कर पाऊँ। क्योंकि अगर मुझे उस राक्षस की शक्तियाँ मिल जाती हैं, तो मैं उस जिन्नाती शॉल के ताप को सह सकता हूँ। जैसे ही उस शस्त्र ने ये कहा, राक्षस की माँ की आंखों में चमक आ गई। वो कहने लगी, वाकई मेरी शक्तियाँ तो कुछ ज़्यादा ही हैं। तुम्हारे अंदर शक्तियाँ डालना, तुम्हारे अंदर भी दिमाग आ गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर मैं चाहूँ तो उस जिन शॉल को भी शक्तिहीन कर सकती हूँ। ये सोचते हुए वो जोरों से हंसने लगी, और जल्दी ही उसने उस शस्त्र को परीलोक में मंत्रों के द्वारा अपने बेटे के पास भेज दिया और सारी बातें समझा दी थीं कि उसे जादुई शॉल के तोड़ की शक्तियाँ देनी होंगी। इसके लिए उसे 24 घंटे तक अपने राक्षस बेटे के साथ रहना होगा। वो शस्त्र जल्दी ही वहाँ पहुँच चुका था और उस राक्षस से शक्तियाँ सीखना शुरू कर दिया था, जिसके द्वारा वो जिन अंश तराना के जादुई शॉल के तोड़ निकाल सकता था। वहीं दूसरी ओर अमन, तारा, अमरिंद्र और करिश्मा जी तराना को लेकर बगीचे में पहुंच चुके थे। जैसे ही वे वहां गए और दादा महाराज का आवाहन किया, दादा महाराज वहां नहीं थे। अब सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि दादा महाराज का पूरा परिवार वहां मौजूद था, लेकिन दादा महाराज उनसे मिलने के लिए नहीं आ रहे थे। उन्हें काफ़ी हैरानी हुई। तभी करिश्मा जी कहने लगी, पिताजी, आप कहाँ हैं? पिताजी महाराज, आपको यहाँ आना होगा और अपने जिन अंश को देखना होगा और उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, वहाँ बगीचे में थोड़ी सी आंधी तूफान चला, लेकिन दादा महाराज नहीं आए। तब अमरेंद्र जी कहने लगे, दादा महाराज, आखिरकार आप हैं कहाँ? महाराज, आ जाइए और आकर देखिए कि हमारे घर में जिन अंश पैदा हो चुका है, और आप उसे अपने आशीर्वाद से नवाजिए, क्योंकि जब तक आप उसे अपना आशीर्वाद नहीं देंगे, उसका इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ होगा। जैसे ही अमरेंद्र जी ने इस तरह की बातें करना शुरू की, वहां की पृथ्वी पर हल्का सा कंपन हुआ, लेकिन दादा महाराज अभी भी नहीं आए। अब तारा और अमन एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है और दादा महाराज आ क्यों नहीं रहे हैं, जबकि उन्हें उनके पहले बुलावे पर ही आ जाना चाहिए था, लेकिन दादा महाराज वहां नहीं आ रहे थे। तभी करिश्मा जी अमन से कहने लगी, बेटा, मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारे दादा महाराज हमसे क्रोधित हो गए हैं, इसीलिए वे यहाँ हमारे सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं। तब तारा कहने लगी, लेकिन करिश्मा मॉम, अब हम क्या करें? दादा महाराज को मनाएं तो आखिरकार किस तरह से मनाएं? तभी अमन हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, दादा महाराज भले ही क्रोधित होकर हमारे सामने ना आए, लेकिन वे हमें जरूर देख रहे होंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है और दादा महाराज को मनाने का तरीका भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा कहकर तारापरी की गोद से उसने तराना को अपनी गोद में ले लिया और उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। जल्दी ही अमन उसे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया था, जिस पर दादा महाराज समाधि लिए हुए थे। उसने पेड़ की एक टहनी को हल्का सा तराना से छुआने लगा। जैसे ही तराना मुस्कुराई, अचानक से दादा महाराज वहां सबकी आंखों के सामने मौजूद थे। दादा महाराज को इस तरह से अपनी आंखों के सामने देखकर करिश्मा जी और अमरेंद्र जी मुस्कुराने लगे। वहीं तारा भी मुस्कुरा उठी। तभी दादा महाराज तराना की ओर देखकर उसे हंसता हुआ देखकर काफी व्याकुल हो उठे और अमन की गोद से जल्दी ही उसे अपनी गोद में भर लिया। ना जाने कितने 100 वर्षों तक उन्होंने जिन्नंज का इंतजार किया था और अब अपने जिन्नंज को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा था मानो उनका जीवन पूरी तरह से सफल हो गया हो। वहीं तराना अपने छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठाकर दादा महाराज की दाढ़ी को छू रही थी, जो कि एकदम सफेद थी। तब दादा महाराज और भी ज्यादा मुस्कुरा उठे। तभी अमरेंद्र, करिश्मा जी, अमन और तारा सभी ने अपने हाथ जोड़ लिए। तब दादा महाराज अमरेंद्र जी की ओर गुस्से से देखते हुए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमें भूलने की? तुम जानते हो कि हमें भूलने का तुम्हें कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता था? अगर तारा बेटी को याद नहीं आता तो क्या तुम लोग तराना बेटी को हमारे पास लेकर नहीं आते? कहीं ना कहीं दादा महाराज भले ही समाधि में थे, लेकिन उन्हें अमन के घर की सारी बातें अच्छी तरह से पता थीं कि जिन्नातों की दुनिया में जिन्नंज जा चुका है और उसका नाम भी रखा जा चुका है। जैसे ही दादा महाराज ने इस तरह से गुस्सा करना शुरू किया, अमरेंद्र जी तुरंत अपनी आंखों में आंसू लेकर उनके सामने जाकर खड़े हो गए। वे कहने लगे, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, तराना के आने की खुशी में वाकई हमारे दिमाग से सारी चीजें निकल गईं, लेकिन हम भूल गए कि हमारी खुशियां आपके बिना अधूरी हैं। पिता महाराज आप हमें माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर अमरेंद्र जी लगभग रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वैसे भी जब से उनकी शक्तियां गई थीं, वे आंसुओं के साथ ही रोया करते थे। करिश्मा जी भी अपनी भूल का पश्चाताप करने लगी, लेकिन तराना की मुस्कुराहट देखने के बाद दादा महाराज अपना गुस्सा भूल चुके थे। वे कहने लगे, तुम लोगों को अब इस तरह से हमारे सामने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हमने तुम लोगों को माफ कर दिया है, वो भी सिर्फ अपने जिन्नंज के कहने पर। जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा, तारा हैरानी से कहने लगी, लेकिन दादा महाराज आपको कैसे पता? आपने कब सुना कि तराना ने आपको माफ करने के लिए कहा है? जबकि इसने तो कुछ बोला ही नहीं है, ये तो अभी बहुत छोटी है।
तभी दादा महाराज तारापरी की भोली सी बातों को सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, बेटा इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपको सारी चीजें समझा देंगे। तभी तारापरी के मन में जो सवाल थे उनका जवाब दादा महाराज से जानना चाहती थी, लेकिन करिश्मा जी, अमन और अमरेंद्र जी के सामने वो उन सवालों को कैसे पूछ सकती थीं? अगर वो उन सवालों को पूछती तो सभी की नज़रों में आ सकती थीं। तभी तारा इससे पहले कि वो सवाल पूछती, करिश्मा जी कहने लगी, दादा महाराज इसके साथ साथ हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, अमन काली शक्तियों के महागुरु से मिलना चाहता है। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, दादा महाराज ने अपना हाथ उठा दिया और कहने लगे, आप लोगों को हमें कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सारी बातें अच्छी तरह से जानते हैं कि अमन क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। तब वे अमन की ओर देखकर कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है कि हमने अपने सफ़ेद जिन पर आई मुसीबत को दूर करने की कोशिश नहीं की होगी? हमने क्या इस दुश्मनी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की होगी? बहुत पहले जब उसने अमरेंद्र पर हमला किया था, उसी वक्त हमने उनसे दुश्मनी ख़त्म करने की कोशिश की थी, ताकि तुम पर और मान पर किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, लेकिन उल्टा उसने हमें समाधि लेने पर मजबूर कर दिया था और उसने साफ साफ कहा था कि जब तक वो हमारे वंश का नाम और निशान तक नहीं मिटा देता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि उस महायुद्ध में उसके परिवार का अंत हो चुका था। जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा, अमन के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। वो कहने लगा, लेकिन दादा महाराज मैं अपनी बेटी के लिए किसी तरह की कोई दुश्मनी या मुसीबत नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जिए, और इंसानी लोगों में जिए या फिर जिन्नाती लोक में जिए, लेकिन हमेशा खुशहाल ज़िंदगी जिए, उसे किसी तरह का कोई जान का खतरा ना हो। तभी जिन महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हारी बेटी इतनी ताकतवर होगी कि लोगों को उसमें अपनी जान का खतरा नज़र आएगा, तो तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम फिर भी काली शक्तियों के महागुरु से मिलना चाहते हो तो याद रखना, वो इमोशंस के साथ खेलने में बहुत माहिर है, वो तुम्हारे जज्बाती के साथ खेल सकता है और तुम्हें अपनी बातों में फंसा सकता है। तब अमन कहने लगा, लेकिन फिर भी दादा महाराज मैं अपनी एक कोशिश करना चाहता हूँ, मैं काली शक्तियों के महागुरु से मिलकर इस दुश्मनी का अंत चाहता हूँ, आप मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दीजिए। जैसे ही अमन ने ये कहा, दादा महाराज ने एक पल तराना की ओर देखा और अगले ही पल कह दिया, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम वहां पर जिन अंश को लेकर यानी कि तराना को लेकर नहीं जाओगे। तभी करिश्मा जी कहने लगी, लेकिन दादा महाराज, अगर वो तराना को लेकर नहीं जाएगा तो इससे अमन को खतरा हो सकता है। तभी दादा महाराज कहने लगे, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारा बेटा एक जिन महाराज है, तो भला उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है। तो करिश्मा जी अब चुप हो गई। तभी अमन कहने लगा, मैं कल ही काली शक्तियों के महागुरु से मिलने जाऊंगा और इस दुश्मनी का अंत करने के लिए कहूंगा। जबकि अब किसी काली शक्तियों के महागुरु ने भले ही किसी और की तलाश में हो, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी को भी नहीं भेजा था जो कि जिन अंश का अंत कर सके। उन्होंने अमित के बेटे को ऑलरेडी तपस्या करने के लिए कैद कर दिया था और साथ ही साथ जो अमित का दूसरा बेटा था वो भी तपस्या के लिए कैद हो चुका था। तो इसीलिए अब जिन अंश को काली शक्तियों की तरफ से किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। लेकिन अब इस तरह से अमन के जाने पर न जाने कुलगुरु कैसा बर्ताव करने वाला था। वहीं दूसरी ओर उस राक्षस ने जल्दी ही अपनी माँ के उस शस्त्र को वे शक्तियाँ दे दी थी जिसके बदले में वो जादुई शॉल का तोड़ निकाल सकता था और आराम से उसका ताप महसूस कर सकता था, उसके बाद जिन अंश को मार सकता था। तो यही सोचते हुए वो शस्त्र बहुत खुश था और इसीलिए सीधा वो पृथ्वी लोक आ गया था और अमन के बंगले में तारा, माँ और तराना के आने का इंतजार करने लगा था।